أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير المعين. الہی انتقنی بالخدا والہم التقوی. آج جو مجھے موضوع دیا گیا ہے وہ اب خود موضوع کے اندر سینسیٹیوٹی بھی ہے عورت کی ذات کا خواتین کے حوالے سے، اجتماع کے اعتبار سے اہم ترین مسئلہ جسے ہم آج تھوڑا سا شیئر کریں گے، کچھ عرفی نقطۂ نگاہ سے، کچھ اخلاقی نقطۂ نگاہ سے، کیونکہ آج میں اس کے فقہی مسائل کو ٹچ نہیں کروں گی، آج کی حد تک اسی کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اور اسی کو انشاءاللہ مکمل کریں گے، اور وہ ہے پردہ. اس سے پہلے کہ میں پردے کے حوالے سے کچھ دلائل، کچھ اعتراضات اور ان کا رد آپ کے ساتھ شیئر کروں، ایک روایت جسے احادیث الطلاب میں آیت اللہ مجتہدی تہرانی نے نقل کیا، اور اس کے علاوہ بھی یہ فیمس روایت ہے، مشہور روایت ہے. اس روایت کے آغاز میں امیر المومنین مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام امیر المومنین فرماتے ہیں کہ سیاتی زمان ان قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا، نسوتن عورتیں اس زمانے میں کاشفاتن آریات سمجھے ایک طرح سے پہنے ہوئے نیکڈ ہوں گی. پہنے ہوئے نیکڈ ہونے کا لفظ جب میں نے پہلی مرتبہ روایت میں پڑھا آیت اللہ مجھے تہرانے کی، اور ابھی روایت کی شرح نہیں پڑی تھی تو میں سوچ میں پڑ گئی ہاؤ اٹ پاسبل ایک شخص نے پہنا ہوا بھی ہے اور وہ نیکڈ بھی ہے. بہت دیر تک دماغ پر زور ڈالا کہ کیسے ممکن ہے، اور جیسے ہی تھوڑی سی دماغ کی بتی جلی تو احساس ہو گیا کہ بہت زیادہ ممکن ہے. ہمارے پاس بہت سارے ایسے ڈریسز ہوتے ہیں لان میں، بریزے میں، شیفون میں، کہنے کو ہم نے ایک پراپر 6-7 میٹر کپڑا اپنے اوپر لپیٹا ہوا ہے، لیکن ہم ٹوٹلی سامنے والے کو یعنی جسم کی ہر چیز محسوس ہو رہی ہے. نسبتن کاشفاتن آریات ایسی ہیں جو کھلی ہوئی بھی ہیں اور اپنی طرف سے انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا بھی ہے. اس کے بعد مولا 3-4 صفات کو بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ خواتین ہیں جو لذتوں کی طرف تیزی سے بڑھنے والی ہیں. جب عورت اپنے آپ کو صحیح طرح سے ڈھانپ نہیں پاتی، جب عورت اپنے آپ کو صحیح طرح سے کور اپ نہیں کر پاتی، اور پھر میں اگر اس موضوع کو میں نے ایک ویک اور چلایا تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آج کی پردے دار عورت کا بھی ایک بڑا المیہ ہے. وہ پردے میں رہ کر بعض ایسے کام کرتی ہے کہ انسان جو بے پردہ عورت ہے وہ اس کا پردہ دیکھ کر بجائے اس کے کہ انسپائریشن ملے الٹا کہتی ہے ایسے پردے سے ہم بے پردہ بھلے. اب یہ سوچ صحیح ہے یا غلط یہ خود ایک بحث کی جگہ ہے، لیکن انصافاً سب سے پہلی چیز پردہ. اگر ہم پردے کو ڈسکس کرنا چاہیں، میں نے اس حوالے سے کافی پڑھا شہید مصعب مطہری کو، اردو میں ان کی جو کتاب ہے فلسفہ حجاب کے نام سے، اردو میں شاید اس کی ٹرانسلیشن ہے عورت پردے کیا ہو. اس میں اچھا اس کتاب کا حسن تباہ کر دیا گیا ہے ترجمے کی وجہ سے، اور ان کے کچھ مقالات ہیں 1970s کے لیکچرز ہیں دانشگاہ تہران کے، میں نے گوگل پہ سرچ کیا شیخ مصعب مطہری کے ان مقالوں کو اور ان گزینوں کو، تو اس کے اندر انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے پردے کی بحث کو کہاں سے اٹھایا ہے. پہلا سوال اٹھایا کہ آیا اس پردہ اسلام کا حصہ ہے یا اسلام سے پہلے کے مذہبوں میں بھی پردہ تھا. یعنی ہم پہلی سوچ اپنے ذہن میں کیا رکھیں، اسلام آیا پردہ لایا؟ جیسے ہم کہتے ہیں اچھا دیکھیں کچھ عبادتیں ایسی جو اسلام سے پہلے نہیں تھی، کچھ عبادتیں ایسی جو اسلام سے پہلے تھی اسلام والے اسٹائل میں نہیں تھی. روزہ سابقہ امتوں میں بھی تھا، اور خود قرآن سورہ مبارک بقرہ میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. دیکھو ہم نے تم پر روزہ فرض کیا جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھا. مباحث علمی در تفسیر المیزان میں علامہ محمد حسین طباطبائی لعل اللہ مقامہ نے روزہ دوسرے مذہبوں کے اندر بیان کیا ہے، ہندوؤں کے اندر بھی روزہ ہے، یعنی مذہب جو یہ ہندوازم ہے اس کے اندر بھی روزہ ہے. چاند کی پتہ نہیں 12-13-14 عورتیں روزہ رکھتی ہیں، और उसके अलावा कुछ मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट थे, ईसाइत के अंदर रोजा था, यहूदियत के अंदर रोजा था, और शायद गुज़िश्ता शायद नहीं यकीनन मरहूम मोहम्मद हुसैन तवातवाई का नजरिया यह है कि अगर इस्लाम के रोजे को गुज़िश्ता उम्मतों के रोजों के साथ कंपैरेटिवली देखा जाए, सबसे आसान, सबसे हल्का, सबसे सबक रोजा हमारा है। लेकिन रोजा पहले से था, इस्लाम लेकर आया, उसे इजी करके मेरे और आप तक पहुंचाया, जिस तरह के छठे इमाम सादिक आले मोहम्मद इमाम दाखिल इमाम सादिक फरमाते हैं कि हम तुम्हारे लिए शरीयत सहला लेकर आए, आसान शरीयत। दीन पैगंबर के अंदर, दीन मुबीन इस्लाम के अंदर कोई सख्ती, कोई उस तरह की जिसे कहें रिजिडनेस नहीं थी जो हमारे लिए उसके ऊपर अमल करना मुश्किल हो जाता। हज गुज़िश्ता उम्मतों में भी था, हज के वाजिब होने के बाद पैगंबर ने हज को पहली मरतबा अंजाम दिया, और अल्लाह जाफर सुबहानी दारुज़िल्लाहुल आली अपनी किताब फराज़ाई और ज़िंदगानी पैगंबर इस्लाम में नकल करते हैं, हज के वाजिब होने से पहले शायद पैगंबर अपनी जिंदगी में 20 हज अंजाम दे चुके थे। उस हज का ट्रेंड अलग था, अलबत्ता उसमें भी तवाफ था, काबा मरकज हज था, यानी इस्लाम से पहले भी। अर्जुन शहीद मिर्जा मुतहरी बहस उठाते हैं और कहते हैं कि पर्दा, क्या इस्लाम पर्दा लाया या इससे पहले के मजहबों में पर्दा था? कहते हैं पर्दे का कॉन्सेप्ट आपको दुनिया में मिलेगा और ये इस्लाम के साथ मखसूस नहीं है, इस्लाम ने इसे एक ढंग दिया है, इस्लाम ने इसे एक तरीका, एक पैटर्न दिया है। सूरह मुबारक नूर जिसके अंदर आयत नंबर 30 है, उसमें परवरदिगार आलम सबसे पहले मर्दों से मुखातिब होता है और फरमाता है कुल्लिल मोमिनीन यगुस्सू मिन अबसारहिम, हम मोमिनीन से अहबीब कह दो अपनी निगाहों को झुका दें। पर्दे का हुक्म इससे पहले कि औरत के लिए आता, मर्द के लिए आया, और उससे कहा गया कंट्रोल योर आइज, अपनी आंखों को नीचे रखो, ना तुम देखो। और फिर रिवायतों ने इस चीज की बड़ी मजम्मत की, निगाह को, ये जो आंख उठती है, अच्छा चाहे औरत की मर्द की तरफ उठे, ये मत सोचेगा कि मर्दों को आंखें झुकाने का हुक्म है, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना मेरी बात से कोई ये सोचे कि भाई इन्होंने तो कहा सूरह नूर के आयत नंबर 30 में पहले मर्दों को हुक्म दिया गया कि मर्दों को चाहिए मोमिनीन से कह दे हबीब अपनी निगाहों को झुकाए रखें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। और फिर आखिर आया, और फिर दूसरी आयत नंबर 31 में परवरदिगार कहते हैं कुल्लिल मोमिनात यगज़ुज़्ना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़िज़्ना फ़ुरूजहुन्ना व ला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबउलतिहिन्ना व आबाइहिन्ना व आबाए बउलतिहिन्ना व इख़वानिहिन्ना व बनी इख़वानिहिन्ना इला आखिर आयत। एक मुफस्सल आयत कुर्सी के हजम की एक आयत है जिसके अंदर परवरदिगार 12 महरमों की फहरिस्त दे रहा है। अलबत्ता इस फहरिस्त में एक चीज ऐसी है जिसे फुकहा ने, मौजूदा फुकहा ने एक्सेप्ट नहीं किया, वो घर में काम करने वाले बूढ़े मुलाजिम हैं। इस आयत में अगर आप जाएं, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मुझे पता है आप घर जाकर तो थक चुके होंगे, ऑब्वियसली जो संडे वाले दिन मदरसे आता है वो शाम को घर जाकर, आजकल वैसे शादियों के सीजन चल रहे हैं तो बंदा बाद का तो कोई सर पे शादी में जाना सवार होता है, आपके पास पहली फुर्सत मिले आप ये 10 मिनट लगाएं, 12 मिनट लगाएं शायद की हाशिया पढ़े। मैं तफसीर पढ़ने की बात नहीं कर रही कि आप कहीं आप एक टाइम टेकिंग प्रोसेस में से हमें गुजारना चाह रही है जहरा, नहीं ऐसा नहीं है, आप इस आयत की सिर्फ फहरिस्त पढ़ें। लेकिन परवरदिगार ये जो नजर को झुकाने का हुक्म है बेशक पहले मर्द को दे रहे हैं, लेकिन निगाहों को झुकाने का हुक्म दोनों पार्टियों के लिए। रिवायतें कहती हैं निगाह, नजर उठना नामहरम की तरफ सहमुम मिन सहाम इब्लीस, शैतान के तीरों में से एक तीर है। हत्ता रिवायात का खुलासा और मफहूम इस तरह से है कि नामहरम के चेहरे की तरफ निगाह करना आपकी इबादत की लज्जत को खत्म कर देता है। मैं आपको एक छोटी सी दुनिया की मिसाल दूं, क्योंकि ये तो अब हमारी तीसरी चौथी क्लास हो गई, हम सबको आपको अंदाजा होगा मिसाल के बगैर मेरी रोटी हजम नहीं होगी। लेकिन आपने देखा बाज़ुकत हमें, हम में से बहुत सूखो जब नज़ला होता है तो हमारा मुंह जायके की चीज़ खत्म हो जाती है, बुखार के अंदर आपको हर चीज बदमजा लगती है। क्यों बदमजा लगती है? वही निहारी, वही पाए, वही भेजा जो आप बड़े शौक से खा रही थी, जैसे ही बुखार होगा आपको वो खाने का दिल, उठाओ ले जाओ, नहीं दिल चाह रहा। क्यों नहीं दिल चाह रहा? बीमारी रुकावट खड़ी कर रही है, मेरा जायका खराब हो गया है, अब मुझे ये चीज अच्छी नहीं लग रही। या बाद में जैसे नाक बंद होता है तो भी जिंदगी उकता बेजार सी हो जाती है, छोटी सी कोई बीमारी आती है। इसी तरह से बाज रूहानी चीजें दूसरी चीजों की लज्जत को खत्म कर देती हैं, और उन लज्जतों के खत्म होने और हम खुद इस चीज को बहुत प्रैक्टिकली फील करते हैं कि हम इबादत के अंदर वैसी लज्जत महसूस नहीं करते। घंटों हकीकत है, अब ये ग्राउंड रियलिटी बन गई है कि घंटों हम इंटरनेट इस्तेमाल करते रहे हमें पता नहीं चलता, स्पेशली जो लोग फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं, पता नहीं कौन सी चैट इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, घंटों पता नहीं चलता। और हत्ता बाजू का कहना पड़ता है अम्मी को जाते हुए कि धूप के नीचे चूल्हा जलाया था। मैंने उसे मदरसे में मिसाल भी दी थी कि माँ ने आकर कहा, मैंने कहा था 20 मिनट बाद धूप का चूल्हा बंद कर देना, तो वो एक बच्ची जो बैठी हुई थी उसने कहा, अम्मी ये लोग तो बहुत देर से सोए, कहा लास्ट व्हाट्सएप का लास्ट सीन तो 3 मिनट पहले का आ रहा है और ये बहुत देर से सोए हैं, बस ये मुझे देख के फिरौन की मम्मियां बन जाते हैं जैसे सदियों से मरे हुए हैं और इन्होंने हिलना नहीं है। लेकिन फिर बच्चे ने कहा अम्मी का इंटरनेट बंद कर देना चाहिए, इसलिए कि अम्मी बिगड़ती जा रही है हर दिन और अम्मी का चेक बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है। लेकिन इंसाफन अगर हम देखें कुरान पढ़ने में कितना दिल लगता है, 1 से 12 वो भी पता कैसे पढ़ते हैं, मुड़ मुड़ के दिल होते हैं। और जो रोज का पढ़ने वाले थे उनको पता होता है कि ये बस 8 सफ़ों का सिपारा है, 12 सफ़ों का, वो कुरान की बाइंडिंग से हमें अंदाजा हो जाता है ना, बस अब आखिरी रुकू ही है और उसके बाद कुरान छोड़ के ऐसे भागते हैं। यानी मैं समझती हूँ हमने कुरान को पढ़ने की लज्जत को कभी महसूस नहीं किया। एक जुमला मैंने बड़ा इंटरव्यू से पढ़ा है, जो मैगजीन में इंटरव्यू आते हैं, अगर आपको एक वीरान जजीरे पर भेजा जाए तो आप किसे साथ लेकर जाएंगे, किसे साथ लेकर जाएंगे, सोचा आपने कभी? अव्वल तो हम ऐसे जजीरे पर जाएंगे ही नहीं, हम सोशल बटरफ्लाई हैं और हम यहाँ पर सही हैं कराची के अंदर। लेकिन लोग हकीकत है वो कहेंगे ठीक है आप हमें एक अच्छी USP दे दें जिसका नेट वहाँ चलता रहे, हमें परवाह भी नहीं। यही सवाल किसी ने एक मरतबा सातवीं इमाम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम इमाम अली मकाम से कहा था, दुनिया और माफिया तबाह हो जाए तो आप क्या करेंगे, वहशत ज़्यादा हो जाएंगे, दम घुट जाएगा, दिल बैठ जाएगा? कहा नहीं, एक दिल कुरान मजीद है काफी है। बकौल अलामा मोहम्मद हुसैन तबातबाई के साहिब अलमिजान कहते हैं, कहा कुरान की आयत, जिस आयत को जितनी मरतबा पढ़ा नई लज्जत महसूस हुई, हमें तो पुरानी लज्जत महसूस नहीं होती। बल्कि कभी कभी हमारी घर में खातून है थोड़ी उम्रदार है, वो कभी कभी खुराकान की वजह से आगे जुमला गा कर दी थी, आज जाकिरा ने कहा इस आयत में किस कदर खूबसूरती और किस कदर मिठास है, जहरा मिठास का है, महसूस क्यों नहीं होती? तो इबादत की लज्जत को किस चीज से खोया, हमारी आई कांटेक्ट जो हम नामहरम के साथ करते थे। रिवायत में तो आपको बता दिया इबादत की लज्जत चली जाएगी जब तुम नामहरम के चेहरे पर निगाह करोगे। और पर्दे का असासी तरीन जो एक जिसे कहें ना जड़ है जो औरत को पर्दा करने पर मजबूर कर देती है, वो बकौल शहीद मुल्ता मुतहरी के वो है गैरत। गैरत की दो अकसाम है, एक वो गैरत है जिसे शायद हम कभी कभी हसद से मिला जाते, एक वो गैरत है, मैं औरतों की उस गैरत की तरफ इशारा नहीं करना चाहती जिसे मौलाना ने नहजुल बलागा में कुफ्र से ताबीर किया है कि उसका शौहर दूसरी बीवी ना करे, वो कंट्रोवर्शियल इशू है, उस पर तो मैंने एक लफ्ज नहीं बोलना। लेकिन ख्वातीन का गैरत का एहसास करना किस तरह से है, पहली चीज हमारा अपनी जात की निस्बत गैरत का एहसास करना। मैं आपसे कुछ हल्के फुल्के से सवाल करूंगी और मैं आपसे उम्मीद रखूंगी कि बेशक आपका दूसरा सेशन है दर्द का, लेकिन आप मुझे अच्छा रिस्पांस दें ताकि मेरा भी दिल चाहे मैं दोबारा कायम आऊं। बाद मदरसों में आपको पता है हमें पब्लिक लेकर जाती है, बेशक एडमिन का एक अमल दखल होता है, उनका एटीट्यूड मेंशन करता है हमारे लिए, लेकिन अगर रिस्पांस देते हैं नीचे बैठे हुए तो हमें लगता है कि नहीं वर्थ है, आप संडे वाला दिन अपना तबाह करें और अपनी 10 एक्टिविटीज या मुसलमान पूरी फैमिली ने फर्ज करें हॉस्टल का प्रोग्राम बनाया, आप हॉस्टल छोड़ के मदरसे इसलिए जाएंगे, मदरसे की पब्लिक आने वाली मोमिनात आने वाली बच्चियां बहनें बेटियां आपको रिस्पांस देती हैं। और अगर वो रिस्पांस आपको नहीं मिलता तो आप कहते हैं चलो ठीक है यार जिंदा सोबत बाकी इस मदरसे को फिर से देखा जाएगा। मैं आपसे पहला सवाल करती हूँ, औरत अपने आप में गैरत का एहसास किस तरह से करती है अपनी जात की निस्बत? मेरा अगला सवाल बड़ा सेंसिटिव है, आपने फेज को तय कर लिया हम आगे चलेंगे, कोई सीनियर्स में से जवाब दे, चेयर्स पे बैठी हुई बहने, औरत अपनी जात की निस्बत गैरत का एहसास कैसे करती है? मैं आपको हिंट देती हूँ, मिसाल के तौर पर मैं हर शख्स से बात करना पसंद दूसरी, ठीक है मैं अब आपको हिंट देती हूँ ताकि आपको जवाब बनाने में सहूलत रहे, ये तो सर मुंडाते ही ओले पड़े, एक तो ऐसे ही कुछ लोगों का दोपहर के 10 मिनट दिल नहीं लगता, ऊपर से ऐसे खुद सवाल करके उनके चारों का हिस्सा नजर किया जाए। दूसरा सवाल, हमारी हर किसी के साथ टोन सेम होनी चाहिए? यानी शेख खुर्रे आमली अलैहि रहमा के हवाले से एक रिवायत को हमारे साथ आ गए मुहसिन कराती ने एक दफा 90s की दहाई में हमारे लिए नकल किया था, कहा कि औरत की के लहजे की टोन बहुत मेंशन करती है मर्द के लिए किस तरह से बात कर रहे हैं। अब उसके अंदर उन्होंने एक बड़ी प्यारी मिसाल दी थी, जाहिरन आ गए शेख उल रामली की किताब से इस्तेफादा करते हुए एक रिवायत की तरफ इशारा किया था, कहा कि जब अमीरुल मोमिनीन मस्जिद में दाखिल होते थे तो खवातीन में से, क्योंकि मस्जिदुल नबी का एक मिजाज था, औरतें पर्दे किस तरह बैठी होती थी, मर्द बैठे होते थे, मौला जब दाखिल होते थे तो सलाम करते थे। एक दिन एक औरत आई और आकर कहने की, अबुल हसन मुझे आपसे एक शिकायत है। अमीरुल मोमिनीन ने कहा क्या? कहा कि आप जब मस्जिद में दाखिल होते हैं तो सिर्फ मर्द हजरात को सलाम करते हैं, हम औरतों को सलाम नहीं करते। अब मौला का जवाब सुनिएगा, पूरे वजूद के साथ सुनिएगा। जब हम कहते हैं कि हम मौला के चाहने वाले हैं, जानिसार हैं, तो फिर इस एतबार से भी जानिसारी हो। मफहूम रिवायत इस तरह से कि मौला कहते हैं मुझे खौफ है मैं सलाम करूं, तुम लोग जवाब दो, किसी की आवाज को सुनकर मेरे दिल में गुनाह का ख्याल पैदा हो जाए। मौला, अच्छा औरत भी सामने से, हमारे पंजाबी कहते कन टुट्टी थी, बहुत एक्स्ट्रा ओवर कॉन्फिडेंट औरतें थी ना, एक्स्ट्रा स्मार्ट किस्म की, तो पलट के कहती है रसूल जब आते थे मस्जिद में सलाम करते थे औरतों पर। मौला कहते हैं वो बूढ़े थे मैं जवान हूं, सेंटीमेंट्स का फर्क है। बकौल आगे की राशी के उन्होंने नकल किया था, कहा हम कहीं चैरिटी लेने के लिए गए थे तो वो बाहर रिसेप्शन में बड़ी हसीना सी बिठाई हुई थी, और जब हम गए तो ऑफिस में वो अकेले थे साहब, हम थोड़ी देर वेट किया, फिर अंदर वो एग्जीक्यूटिव पोस्ट वाले आए थे तो नहीं बुला रहे थे ना, चाहे उन्होंने टाइम भी क्यों ना दिया। कहा जब हम गए, हम बैठे, हमने उनसे कहा कि सलाम दुआ के बाद, कहा कि राती वैसे ही बड़े आउटस्पोकन हैं, कहने लगे कि मैंने उनसे कहा कि ये जो बाहर बैठी महरम हैं, कहा नहीं, कहा कोई सीगा किया हुआ आपने, कोई भांजी भतीजी कोई कोई रिश्ता, कहा नहीं, कहा आपने इनको रखा कैसे, ऑफिस में बहुत सारे टाइमिंग्स ऐसे होते होंगे जब आप इनके साथ अकेले होते होंगे, तो कहा मुझे अलहमदिल्ला अपने तकवे पर भरोसा है। आगे की राती के तो फौरन सामने से खड़ा होकर मैंने कहा सलाम हो आपके तकवे पर जो अमीरुल मोमिनीन के तकवे से ज्यादा है। अब वो सामने वाले को पतंगे लग गए, मैंने कब कहा कहा मौला कहा मैं, तो कहा आगे की राती के दिन उसको उससे रिवायत सुनाई कि मौला डरते हैं मैं ना महरम औरत को सलाम करूं, वो मेरे सलाम का जवाब दे, उसकी आवाज सुनकर मेरे दिल में गुनाह का इरादा पैदा हो जाए। आपका तकवा तो आपको हर तरह की फ्रीडम दे रहे ना। अब मेरे सवाल को समझ लीजिए, अब मैं कैसा जवाब चाह रही हूँ। औरत की अपनी जात की निस्बत गैरत, बात खवातीन, बहुत माजरत, मैंने दो तीन बड़ी ऐसी टाइप की मिसालें बनाई हुई, अब मेरा इन मिसालों के बगैर गुजारा नहीं। मैं परसों डॉक्टर साहब को सुन रही थी, डॉक्टर आबिद हुसैन जैदी साहब को, उन्होंने भी कई मिसाल देते हुए कहा ये बड़ी आमियाना सी मिसाल है। मैंने कहा अवाम का मसला ये है कि अवाम आमियाना मिसाल के बगैर बात को समझते नहीं है। हमारे साथ कहा करते थे अवाम को लाख कहो तकवे के बगैर खुदा कबूल नहीं करेगा, अवाम नहीं सुनेगी। अवाम से कहो कि जहाज की टंकी में आपने पानी भर दिया, जहाज को लाख आप चलाते रहे स्टार्ट करते रहे, वो स्टार्ट क्यों, उसे चलने के लिए पेट्रोल चाहिए पानी नहीं चाहिए। इसी तरह से जिस तरह से जहाज को नहीं पी आई कि जहाज अल्लाह के आसरे पर उड़ते हैं और कैसे दबाव जाकर टकरा जाते हैं, लेकिन जिस तरह से जहाज को उड़ने के लिए, गाड़ी को स्टार्ट होने के लिए टैंकी के भरा होना काफी नहीं है, पेट्रोल से भरा हुआ होना जरूरी है। इसी तरह से आमाल की कबूलियत के लिए महज सिर्फ अल्फाज और अमल काफी नहीं है, तकवा भी जरूरी है। इसी तरह से बास खवातीन को आप देखिए वैन के ड्राइवर के साथ सुबह सुबह ऐसे बातें मंगा रही है जैसे वो भाई है, नहीं देखा आपने कभी, दर्जी के साथ, मेरा ख्याल है उसको तो बिल्कुल ही महरम समझती, मुंह बोला भाई बनाया हुआ सब्जी वाला। अच्छा दर्जी, दर्जी का तो मैंने मिसाल इसलिए दी कि उसके साथ बहुत कुछ डिस्कस कर लेती हैं, नाउज बिल्लाह मिसालिक सुबह नाउज बिल्लाह मिसालिक, मैं बाद मिसालें आपके एहतराम में नहीं दे सकती, नहीं पिछले दिनों मैंने वेट गेन कर लिया ना इसलिए आप थोड़ा सा, आप इतना खुल के बात कर रही है, आपकी गैरत इजाजत देती है कि हम एक नामहरम मर्द से इस तरह से। अच्छा फिर ये पिछले दिनों कायम का अली रजा मेरवी साहब का आया था मसला, एक क्लिप, ये जो वीडियो क्लिप शेयर करते हैं व्हाट्सएप पर, मुंह बोली बहन या मुंह बोली बेटी बनाना, आपने देखा होगा हमारे माशरे में बड़ा राइज है वो मुंह बोले भाई है। हत्ता मुझे किसी ने बताया कि हज पे तवाफ के दौरान उनके मुंह बोले भाई ने उन्हें पकड़ कर तवाफ भी करवा दिया काबे का, और मैं सुन के लड़ गई कि तवाफ करवा दिया किसी और ने ये कहकर कि यहाँ आपके साथ कोई नहीं है, हम आपको सपोर्ट करते हैं, और इस सपोर्ट का अंजाम क्या होगा। औरत अपनी जात की निस्बत, जो मौला ने कहा है कि तीन औरतें सिफात ऐसी हैं जो मर्द के लिए अच्छी हैं लेकिन औरत के लिए अच्छी नहीं है, मतलब औरत को मुतकब्बिर होना चाहिए। वो हर किसी के साथ इस तरह फोन उठाती हैं, शोहर के कुलीग से साथ बातें कर रही हैं, ड्राइवर से बातें कर रही हैं, वही बात सब्जी वाले से बात कर रही हैं, बच्चों के वैन ड्राइवर से बात कर रही हैं, सबके साथ, जिन्होंने व्हाट्सएप पर डीपी पर अपनी पिक्चर्स डाली हैं। मैं आपसे सवाल करती हूँ, जिस जिसके पास मेरा नंबर जाएगा उसके पास मेरी डीपी की पिक्चर भी। अब मैं आपसे सवाल करूँ, वो जो स्विस मिस के इश्तेहार आते हैं और बुलबोर्ड पे आंटियां चमक रही होती हैं उसमें और मेरे में इतना भी फर्क नहीं रहा, उसकी तस्वीर भी हर किसी के हाथ में है। अब मेरा सवाल आप समझ गए, जवाब देंगे तो मैं अगले सेंसिटिव मरहले की तरफ जाऊं। औरत को अपनी जात की निस्बत किस हद तक गैरतमंद होना चाहिए? सलमा एक मिनट, मैं मसलन मिसाल से वादे करें ताकि हमारी बात ही, भाई हमारी बहन का कहना है कि अपने इर्द गिर्द ऐसा एक बाउंड्री हो, एक हिसार हो, इस हिसार के अंदर कोई नहीं आएगा। इस हिसार के अंदर अगर किसी को, एक मिनट में इनकी बात को आगे वाजे कर दूं, इस हिसार के अंदर अगर किसी को आने की इजाजत है वो सिर्फ महरम है। वो मेरे वालिद हैं, वो मेरे भाई हैं, वो मेरे बेटे हैं, वो मेरे भतीजे हैं, वो मेरे भांजे हैं, वो मेरे दादा हैं, वो मेरे नाना हैं, वो मेरे मामू हैं, वो मेरे चचा हैं। इसके अलावा हर कसो नाकस जो घुस जाए। अच्छा, ये बाउंड्री कैसे खड़ी होगी? दो चीजों से। इस बाउंड्री के दो पिलर्स होते हैं। पहला पिलर बोलिए, आपका एटीट्यूड, टोनटी टोन नहीं, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी। बाजू का आपने देखा है, मसलन हमारे साथ एक दफा ट्रैवलिंग में हुआ, एक साहब बैठे हुए हैं थ्री सीटर पर, एक खातून जाकर उनके साथ बैठी, वो पहले बड़े आराम से धड़ल्ले से यहाँ सेलफोन अपना आईफोन 6 रखकर बैठे हुए थे। वो साहिबा जैसे ही आए वो फौरन से रख गए, इट्स मीन मैं तुम्हारे और अपने दरमियान एक फासला। ये टोन जुबान की नहीं है, ये बॉडी लैंग्वेज है, हमारी बॉडी लैंग्वेज। हम हर किसी के साथ अगर खुदा नखास्ता बैठ रहे हैं, अगर कोई हमारे साथ आकर बैठ रहे हैं, मुझे इतना भी मेंशन नहीं कर रहे कि आई डोंट लाइक दिस एटीट्यूड, आप अपनी उसमें रहें, हद में रहें। मसलन अगर फर्ज करें खुदा ना सा जगह बड़ी कम हो रही है तो मैं खड़ी हो जाऊंगी। हमारा एटीट्यूड जिसमें हमारी बॉडी लैंग्वेज आ जाती है और हमारे लहजे की, अल्लाह कहाँ थे आप, मैं भी कब से आप तो आए नहीं, रास्ते भूल गए। अच्छा, ये इंसान सोचते फोन उठा के भाई से बात कर रहे हैं, बात कर रहे भाई से, तो सबर करना, तू भी दिन में 10 बार फोन करता है, दूध के नीचे चूल्हा जल रहा है, बंद करती हूँ फिर आती हूँ। यानी वो जो पहली वाली टोन थी वो नामहरम के लिए टोन थी, जिसे फॉर्मल एटीट्यूड कहा जाता है। इसमें कोई भी हो सकता है, यानी हमारी टोन, हमारा लबो लहजा, किस तरह से बात की जाए। और इस हवाले से यानी सदर इस्लाम के अंदर खवातीन के लिए बड़े इश्यूज थे, वो पैगंबर से आकर बार बार सवाल करती थी कि क्या हम नामहरम से सिरे से बात करें, गैर जरूरी बातें नहीं होती। इसीलिए आगा शीसानी ने ये जो चैटिंग के मसले के ऊपर इतनी सेंसिटिविटी दिखाई है, सिर्फ सलाम दुआ से बात शुरू होती है और फिर कहां तक चली जाती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है और आपका और मेरा तो सितारा भी मिलता है, और उसके बाद फिर नए सिलसिले और उसके बाद फिर तबाही। खुलासा, पहला पिलर हमारे हमारी गैरत के दायरे का वो है हमारा एटीट्यूड, हमारा रवैया, हमारा बिला वजह किसी से मुस्कुराना, हर किसी को स्माइल देना। और हम चाहते हैं कि लोग हमें खुश अखलाक कहें, लोग आपको खुश अखलाक कहते हैं। खुदा की डिक्शनरी में आपका नाम खुश अखलाकों में नहीं लिखा। हम इस चीज को भी तो जहन में रखें। डॉक्टर नासिर रफी ने अपनी सुखनरानियों में एक मकाम की तरफ इशारा किया कि हबीब इलाहल आलमीन मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा, जिब्राइल ने पूछा कि जिब्राइल क्या फरिश्ते एहसासात रखते हैं? हमारे यहाँ नॉर्मली फरिश्तों को हम रिमोट कंट्रोल गाड़ी की तरह समझते हैं, रोबोट कार की तरह, रोबोट, अल्लाह ने कहा खड़े हो जाओ, खड़े हो गए, बैठ जाओ, बैठ गए। उनके अंदर शहवत नहीं है, बहुत सारे दूसरे सेंटिमेंट्स हैं। कहा या रसूल अल्लाह, मलाइका कभी तमस्खुर उड़ाते हैं? कहा कब? कुछ मवाक़े बयान किए, मैं सिर्फ दो इशारा करूं। कहा एक मौका जब वो जमीन पर देखते हैं कि कुछ लोग या एक फर्ज मिलकर किसी को रुसवा करना चाहता है, और वो अर्श उला पर देखते हैं कि खुदा के पास लहवो महवो इस बात में लोहे महफूज में उस शख्स का नाम इज्जतदारों में लिखा है, और अगर ये नीचे वाले मुसलमान होते हैं तो मलाइका उनसे तमस्खुर से कहते हैं क्या तुमने कुरान की आयत नहीं पढ़ी, हुआ तो इज्जो मन तशाओ व तो जिल्लो मन तशाओ, इज्जत देना और जिल्लत देना खुदा का काम है। और कहा दूसरा मौका जब एक बेपर्दा औरत को गुस्ल के बाद कफन पहनाते हुए, कफन पहनाने वाली खवातीन देर रात में कपड़ा लपेटती, ऑलमोस्ट मेरा अंदाजा 18-19 मीटर हम लपेट देते हैं, ठीक है? ये 18-19 मीटर जब हम लपेट रहे होते हैं तो एक फरिश्ता दूसरे फरिश्ते से पूछता है अभी से कोई देखने का रवादार है? वो पहले वाला फरिश्ता कहते नहीं, कहते जब देखने के रवादार से जब तुझने अपने आप को लपेटा मुस्तहबा से कफन में से, कफन के जो बेसिक है वो तो मर्द और औरत का सेम है, वो लुंग है और वो पिराहन है और वो सरतासरी है, मुस्तहबात कफन में से एक सीना बंद ही होता है खवातीन का, ताकि उनके पूरे फिगर्स को छुपा दिया जाए, जनाबे सैयदा अगर शहादत के बाद मुस्कुराई हैं तो इस बात पर मुस्कुराई हैं जब उन्होंने असमा से दिल दर्द दिल किया है। यहाँ पे फातिमिया करीब हैं, हम शहजादी का बरकत तबरुकन तस्किरा करते चले कि कहा कि जब अरब जनाजे को उठाते तो औरत का पूरा वजूद नुमाया हो जाता है। तो उस्मान ने कहा मैंने एक चीज हबश में सीखी है हिजरत के दौरान, सहने खाना में कुछ खजूर की शाखें पड़ी थी, लाई और लाकर एक ताबूत नुमा चीज बना के कि वो अपने मुर्दों को इस तरह से उठाते। फतबस्समत फातिमा, शहजादी मुस्कुराई और असमा से वसीयत किसी तरह से मेरा जनाजा उठे। बस दो चीजें गैरत की असास हैं, हमारे बाउंड्री की असास हैं। पहली चीज हमारा एटीट्यूड और सेकेंडली हमारी ड्रेसिंग। अब मैं आपसे दूसरा सवाल करती हूँ, वो सेंसिटिव वाला सवाल नहीं जिस तक मैंने जाना था। ये दूसरा सवाल है कि ड्रेसिंग, बाज लोग बहुत पहन कर भी दावत नजारा नहीं देते। मसलन मैं आपको इसकी एक मिसाल मैं देती हूँ, अब एक मिसाल आपको बनानी पड़ेगी, नहीं बनाएंगी तो मैं नाराज हो जाऊंगी और अपने टाइम पर वॉकआउट करके चली जाऊंगी। क्लास को 20 मिनट से तो छोड़ना खैर मैनर्स के खिलाफ है। आपने नहीं देखा बहुत बड़े बड़े कैचर्स लगाती हैं बच्चियां? क्यों लगाती हैं? ओ पता नहीं, अच्छा दूर से देखें तो पता नहीं चलता, अगर मुंह नजर नहीं आ रहा ना सर आगे या पीछे। लिटरली यानी अगर मैं गलत कह रही हूँ तो आपको हक है कि आपको नहीं नहीं ऐसा नहीं होता मैडम, ऐसा नहीं होता, होता है ऐसा। और पीछे से अटकाया थे, मैंने 2 साल पहले सेकंड लास्ट रमजान की बात है, हमारी रमजान में इफ्तार के बाद एक क्लास हो रही थी, तो मैंने बच्चियों से कहा कुछ बच्चियां लगाकर आगे बैठी हुई थी, बेचारी मेरी दाढ़ के नीचे आ गई। अब मैंने हाफ मेंशन तो नहीं किया, मुझे इसने लगाया इसने लगाया, मैंने कहा क्यों लगाते हैं? तो एक बच्ची ने बड़ा फौरन सर उठाकर कहा इससे कैलर टिकी रहती है। मैंने कहा जो नहीं लगाते उनकी कैलर टिकी रहती है। मैंने कहा आप अजीब लेकिन एक्सक्यूज ला रही है। कुरान कहते बला अला बलिल इंसान अला नफ्सिह बसीरा वलो अलका महसीरा, हमने से हर शख्स अपने बातिन से बाखबर है। हमने आपके ख्याल में से शैल और मकने को टिकाने के लिए लगाए? नहीं ना लगाया हुआ है। अच्छा दूसरी चीज बेतहाशा स्टोन्स का इस्तेमाल, नहीं देखा आपने स्टोन्स चमक रहे हैं दूर से आस्तीनों के ऊपर मोजों के ऊपर। मैंने उस दिन किसी के मोजे देखकर पूछी गए उनके धोती तो उतरते नहीं है। मैंने कहा हम तो बेचारे जारी बात है जो रेगुलर मोजे पहनने वाला है जिसे घर में फर्ज करे ना महरम के आने पर पहने बाहर पहनते ही जाने, तो मैंने कहा वो बाल अगर बाथरूम में एक छोटा सा डोंगा सा रखा होता है नहाने वाला वो जो होता है उसके अंदर सरफ डाला होता है उसके अंदर भिगो के यूं घिस रहे तो मोती लगे हुए तो उतर जाएंगे। तो बड़े प्यार से कहते इनको बहुत एहतियात से धोना पड़ता है। मैंने कहा फिर ये पैरों को पुलिस रात पर जमने भी नहीं देंगे जो एहतियात से धुल रहे हैं मोजे। लेकिन मसलन हिजाब के अंदर इतनी चीजें कर लेना, लेकिन औरत की गैरत का पहला तकाजा अपने एतबार से मसलन ड्रेसिंग करे, ऐसी ड्रेसिंग ना करे कि हर रात चलते को दावत दे दे कि भाई आ मुझे देख। अब मेरा दूसरा जो सेंसिटिव सवाल मैं आपसे करूं और दलाइल और एतराजात को बयान करके बात को खत्म कर दूं, बास खवातीन इस एटीट्यूड पे फ्लॉप होती हैं, वो अपनी नाबालिग बच्चियों को बहुत बेढंगा पहनाती हैं। बैकलेस ब्लाउज, लूप्स वाले ड्रेसेस। मैं लास्टली ट्रैवलिंग के दौरान ईरान गई हुई थी तो हमारी एक बच्ची इस चीज पर काम कर रही थी, तो उसने मुझे कुछ अपनी दिखाई के मसलन खाला मैंने ये बनाया है, तो उसने उसे एक चीज लिखी हुई थी बहुत ही अजीब और बहुत ही अट्रैक्टिव पॉइंट था उसने कोई इसी मौजू पर कि खवातीन क्यों जो खुद पर्दा कर रही है अपनी बच्ची को क्यों नहीं करवा रही। ठीक है उसकी उम्र के हिसाब से कराया, मैंने कह रही 4 महीने की बच्ची को पर मखना मुसलत कर दे, लेकिन आप उसे ऐसा ड्रेस पहनाए खुदा न खास्ता के देखने वाले का उसको पिंच करने का दिल चाहे खुदा न खास्ता। तो उसने एक माहिर नफ्सियात का व्यू दिया हुआ था वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और हम आगे चलते हैं। उसने कहा बास खवातीन के अंदर उखदा होता है, उखदा यानी एक गिराह बंदी होती है, वो फैमिली के प्रेशराइज करने पर खुद तो पर्दा कर लेती हैं लेकिन जिस तरह के ड्रेसेस वो खुद नहीं पहन सकती अपनी औलाद को पहनाकर दिल की भड़ास निकाल लेती है। और ये भड़ास बच्ची को कहां तक पहुंचा सकती है आप मेरा हिडन मैसेज समझ रहे होंगे। बड़ी खातून तो फिर बहुत दफा जज कर लेती है कि कोई उसे किस नजर से देख रहा है, वो बच्चा इस चीज को जज नहीं कर सकता। यानी हम कहां लेकर जा रहे हैं अपनी नई नस्ल को, और जिस बच्ची को आपने 7-8 साल तक इस तरह के ड्रेसेस की आदत डाली होगी, हत्ता आपसे ये हाल हो गया कि आप बस रेडीमेड गारमेंट अच्छी जो शॉप से जो ब्रांडेड है उनसे जाकर के ना आस्तीन वाला ड्रेस है तो आपको थोड़ा सा यूं करके देखते, वो जो बेचारे 2 नंबर टाइप के होते ना ये सारी तौर पर हल्की दुकान है उन्होंने साथ लगाकर लटकाकर रखी होती है, प्लीज आपने लगानी है लगा लें, आपने लिबरल बनना है आप लिबरल बन जाए। लेकिन हम इस तरह की चीजें यानी इसकी वजह क्या है? सबसे पहली बात अगर मैं गैरत रखती हूं अपनी जात की निस्बत। ससास हूँ, ठीक है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अगर मिसाल दे रही हूँ, देखिए मैं आप पर रखकर बात नहीं कर सकती, आप में से किसी को भी बुरा लग सकता है, लेकिन अगर मैं अपनी जात के लिए एक एक टके की इज्जत और एहतराम के कायल हूँ, ना मैं ऐसी ड्रेसिंग करूंगी कि किसी की मेरी तरफ उंगली उठे, ना मैं किसी से ऐसा एटीट्यूड अपनाऊंगी कि कोई मेरे साथ बिलावजा फ्री होने की कोशिश करे, और उसके बाद मैं इसे दो सूरतों से खाली नहीं है, या तो मैंने हिजाब को दिल से एक्सेप्ट कर लिया। एक उर्दू का शेर है, अभी दो मंडे पहले जब विलादत थी 11वें इमाम की, तो वो उसने ऐसे मुर्ता में एक बच्चे ने भी पढ़ा, या अली तेरा हसीना आम भला लगता है, तेरी निस्बत से ये इस्लाम भला लगता है, लोग कहते हैं तेरे नाम पे काफिर मुझको और मेरे दिल को ये इल्जाम भला लगता है, अगर पर्दा करने पर कोई मुझे रिजिट कहता है, कंजर्वेटिव कहता है, अफगानिस्तान की बोबो कहता है, टोपी वाला उड़का पहन लो कहता है, सो वॉट, कहता रहे, मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। मौला की जहां सिफात बयान हुई है ना रिवायात में, तो मौला की एक सिफात बड़ी खूबसूरत है, मौला लौमत लाइम की परवाह नहीं करते थे, लौमत लाइम मलामत करने वाले की मलामत, मलामत करने वाले की मलामत परवाह नहीं करते थे, ठीक है, इट्स ओके, एक्सेप्ट कर लिया हमने, आपको मेरा पर्दा अजीब लग रहा है, मसलन बाजू का होता है, जो लोग अच्छे तरीके से चादर वादर लेते हैं, जब हॉक्स में जाने का प्रोग्राम बनता है तो फैमिली वाली करती, स्टैंड के साथ जाओगी, पानी में नहीं घुसोगी, हाँ ये बेचारी पर्दा करती है ना, ये कहाँ पानी में घुसती है, अजीब, इन्होंने अपनी जिंदगी खुद ही हराम की है। वो हमें जो बेहिजाब खवातीन होती ना, हमें ऐसे देखती, मुझे याद है एक दफा 7-8 साल पहले इत्तेफाक से ऐसे हज क्लास के लिए हम पीसी में गए, वहां एयर होस्टेसें थी, वो मुझे देखकर डर गई, उन्होंने सोचा था उस जमाने में तालिबान बड़े नए नए चढ़े हुए थे, सोचा अभी मैं अपनी चादर खोलूंगी और कुछ निकालूंगी, और मैं वॉशरूम के एरिया में अपनी बच्ची का पैंपर्स चेंज कर रही थी, शुक्र उन्होंने सिक्योरिटी नहीं बुला ली, सिक्योरिटी पहले कुत्ते थूक चुके थे अंदर जाने से पहले, लेकिन मैंने सोचा ये मुझे तमस्कुर वाली नजरों से देख रही है, और दिल ही दिल में मैं भी इन पर थक रही हूँ, मैं बहुत सेफ फील करती हूँ, मैं से मुराद नॉट माई सेल्फ, हम में से हर वो औरत जो दिल से पर्दा करती है उस पर्दे को ऐसा प्रोटेक्शन लेती है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा ने चाहा हम ढके हुए रहें, खुदा ने चाहा हम ढके हुए रहें, ठीक है, अल्लाह तो हम जहां अकेले नमाज पढ़े अल्लाह हमसे उसमें भी प्रैक्टिस करवाता है, दिन में 5 मरतबा चलो अच्छी तरह से लपेटो ताकि तुम्हें प्रैक्टिस रहे, और तुम्हें फिर ना महरम के सामने किसी किस्म की बात, खवातीन आपने देखे नया नया जब हिजाब शुरू कर दी तो बेचारी सब ना वो संभल ही नहीं है, मखना और दुपट्टा वो सब, और इधर जा रहा होता है इधर जा रहा है, कैसे संभल जाता है, आप प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिकली आपका भी संभल जाएगा। अब नॉर्मली पर्दा दो तरह से पर्दे के मुकाबले में खवातीन रिएक्शन दिखाती, एक वो जिन्होंने दिल से एक्सेप्ट कर लिया होता है वो उसी दिन हो या उल्टी हो उन्होंने पर्दा करना है, और एक वो है जो फैमिली के प्रेशर में आकर पर्दा करती है या एनवायरमेंट की वजह से पर्दा करती है। मैं लास्टली तेहरान एयरपोर्ट पर एक बड़ा, उन्होंने कई साल से एक बैनर लगाया हुआ है, एक लड़की दिखाई हुई है जो तेहरान में आगे से भी बाहर निकले हुए, पीछे से भी निकले हुए हैं, टर्की में एक मोमिना बच्ची दिखाई हुई जिसने विग के जरिए अपने सर को कवर किया हुआ है, और नीचे कमेंट्स दिए हुए हैं कि ईरानी लड़की तुझे क्या तकलीफ है जब तुझे हिजाब की तरफ से इतना यानी सपोर्ट मिलती है, इसे देखो इसे हिजाब की वजह से स्कूलों से निकाला जा रहा है, इसे ऑफिस में जॉब नहीं मिल रही, ये बेचारी दर बदर के धक्के खा रही है लेकिन अपना पर्दा छोड़ने पर तैयार नहीं है। यानी हमने अगर हिजाब को ऐसा प्लेजर लिया, आप दुनिया की किसी भी चीज को खुशी के तौर पर एक्सेप्ट करेंगे, आप हमेशा उस अमल के अंदर खुशी और लज्जत और सुकून का एहसास करेंगे। चार लोग ताने देते हैं, दे आप उनके साथ मिलकर हंसे सुकून से, आपको मेरे पर्दे से इशू है ना, मुझे तो अपने पर्दे से कोई इशू। नॉर्मली बेपर्दा खवातीन के पास सबसे बड़ा बहाना पता है क्या होता है, बेहिजाबी के लिए वो उनको गर्मी बड़ी लगती है। जब भी आप कैसे पहन के बैठी है इस गर्मी में, मुझे याद है कि मैं हॉस्पिटल किसी चली गई तो कह रही काली पट्टियां क्यों बांधी हुई आपने हाथों पर, मैंने कहा अल्लाह ऐसी पट्टियां बांधे कि सबको तौफीक दे दे। लेकिन इंसाफन जब आप खुशी के तौर पर लेंगी आप इसे खुशी का इजहार करेंगी, लेकिन जब आपने किया ही मजबूरन है तब हम प्लेजर फील करते, तब हम कहते कोई मौका है इसको उतार कर फटाफट साइड पे रख दे। परवरदिगार ने चाहा, सबसे पहली दलील शारे मुकद्दस चाहता था हम पर्दा करें, हम पर्दा करेंगे, और खुदा हमें इसी पर्दे की हालत में मौत दे दे, फजीलत इस कदर ज्यादा है। एक आगे हसन करीमी की किताब है रुख सारे आफ्ताब के नाम से, उन्होंने एक वाक्य की तरफ इशारा किया, मैं सिर्फ तबर्रु का इशारा करके आगे बढ़ जाऊं, कि एक आलिम ने मुकाशिफे के जरिए कुछ पता नहीं वो कुछ प्लस माइनस करके इमाम जमाना अजल अल्लाह ताला फराजहु शरीफ को देखा तेहरान में खड़े और एक सामने औरत का ताबूत पड़ा हुआ नमाज जनाजा पढ़ा रहे। मौलवी साहब पहुंच गए मौला से, कह रहे मौला आप यहाँ क्या करे तेहरान के घर में, कई खातून का नमाज जनाजा पढ़ाने आए। कई औरत में ऐसी कौन सी सिफत थी कि आप उठ गए अपने सारे काल में इमकान के कुतुब हैं, कायनात जिस चक्की के गिर घूमती हुई इमाम की जात है, कुल्ला शैन अफसैना की इमाम मुबीन, हमने हर चीज का इंतजार इमाम मुबीन की जात ने कर दिया। कहा आप सारे काम का छोड़ के इसका जनाजा पढ़ाने बैठे हैं। कहा जब कश्य हिजाब हुआ था, जो आखिरी वासिले जहन्नुम हुआ है ईरान का बादशाह इमाम हुसैनी के जमाने में, उसके बाप ने एक कानून बनाया था, जब कोई औरत पर्दा करके निकलती थी उसका पर्दा उतार दिया जाता था। कहा 7 साल तक इस औरत ने कश्य हिजाब की तहरीक के जमाने में घर से कदम बाहर नहीं निकाला, यानी वो खुद अपने पर्दे के लिए वैल्यू कायम थी ना। बिलाखर वो बीमार पड़ी होगी कि नहीं, बिलाखर उसे ग्रोसरी, हमारा सबसे एक जमाना यकीन करें 30 साल से पहले कैसा होता था, वालिद या घर के मर्द हजरात या बूढ़ी खवातीन कपड़े ले आती थी, लाती थी सुल जाते थे और हम चुपचाप। आज की औरत कहती मैं खुद जाऊंगी, 10 मर्दों से टकराऊंगी, फिर मैंने तो अभी पिछले दिनों एक फैमिली फंक्शन निपटाया है, सिर्फ खरीदना आर्ट नहीं है भाई, उसके ऊपर लेस एक दूसरा अजाबे इलाही है, ऐसी सिलवा लूंगी। हाँ तुम्हें कब अकल आएगी, ऐसे नहीं सिलताई, इतना महंगा सूट ले लिया तो उसके ऊपर कुछ लगाओ ताकि सबको पता चले। मैंने कहा सूझने की चादरों की तरह कलरफुल सब कुछ कुर्ता किनारी सब कुछ लगा लो, फिर वो लेस ली जाती है, फिर दर्जी के साथ खपा जाता है, फिर चिक चिक की जाती है, फिर नतीजे में जाकर एक सूट सिलता है। कितने अच्छे से गोल गले काट देती थी अम्मिया, खालाओं में से या बड़ी बहनों में से कोई बैठ के शलवार के पाइचों पर सीधे सीधे बखिया लगा देती थी, हम पहन लेते पर अलहमदुल्ला खुश भी रहते थे। आजकल की औरतें तो इसी सदमे में मर जाती हैं कि जो सूट उन्होंने लिया है उसका मारिया जी का कलेक्शन उनकी मासी पहनकर अगले दिन आ जाए तो फिर बेचारी 2 दिन तक जलती रहती, मासी मुझे कितने मिल गया था। नहीं आजकल मारिया भी नहीं देखा आपने, वो ठेलों में भी वो बी कलेक्शन बहुत चल रहे ना, जो सूट आपने मुमकिन है 3,500-4,000 में लिया उसको 500 रुपये में मिल गया होगा, फिर उसे घर में बैठकर सी लिया होगा और वो पहनकर आ गई होगी और आपका दिल जला देगी। लेकिन इंसाफन हिजाब अर्जिश है औरत के लिए, वो औरत जो दुनिया को देख सकती है लेकिन दुनिया उसे देख नहीं सकती। हिजाब के हवाले से सबसे पहला जो एतराज किया जाता है वो ये है कि औरत को महसूर कर देता है, आसान उर्दू इस्तेमाल करो कैद कर देता है। कहां औरत कैद में रही, बल्कि मेरा ख्याल है ये सातिरुल अयूब है। मैं आपको दो औरतों की मिसाल देती हूँ, आप खुद कंपैरेटिवली देखिएगा दोनों में ज्यादा टेंस कौन है। एक औरत है जो हिजाब नहीं करती, सुबह बच्चों को छोड़ने जाती है, मैं किसी टीचर को जानती हूँ, कहती भले नीचे से उन्होंने वही रात वाले ही कपड़े पहने हो, ऊपर उन्होंने बड़ा शिफॉन का दुपट्टा लिया होगा, आगे आगे बालों को ब्रश करके हल्की फुल्की लिपस्टिक लगाई होगी, बच्चे को छोड़ने आई गाड़ी से नहीं उतरती क्योंकि शलवार और है और कमीज समझे आगे बोले और है, ऊपर से वो केक पेस्ट्री की तरह होती है, जैसे पुराना घर में केक बेक कर ले और उसे फिर ब्लू रिबन भेज दे और उसको बोले इसके ऊपर आइसिंग कर दे, अंदर से बासी केक है ऊपर से आइसिंग फ्रेश है। ये औरत ऐसी है बेचारी, इसे जरा सा भी बाहर निकलना पड़ता है तो इसे पहले अपना चेहरा अपने बाल अपने छोटे मोटे बुंदे अपनी लिपस्टिक सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है। मैं कभी कभी सोचूं जिन खवातीन ने मोजे नहीं पहने होते उन्हें कितना अपनी एड़ियों का फिक्र रहता होगा, और मोजे पहने के से हमारी एड़ियां फटती ही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा एक औरत है जो हिजाब करती है, लिटरली टेंशन फ्री है, उसे बुंदों की फिक्र गले में कुछ पहनने की फिक्र, अलबत्त औरत के लिए मुस्तहब है कि वो जब नमाज पढ़ने खड़ी हो तो उसे गर्दन में कुछ पहना हो। रिपीट करूं, औरत के लिए मुस्तहब है चाहे वो बैचलर हो चाहे वो शादीशुदा हो। हमारी अम्मियां कहती थी शादीशुदा के लिए, अम्मियों से माजरत के साथ बेसिकली औरत के लिए मुस्तहब है। मुस्तहब बातें नमाज में साहिब औरतुल उसका अगर काजिम तबा तबाही यजदी ने जहां मुस्तहब बातें नमाज लिखा हुआ है तो औरत के गले में खिलाता हो, कोई कोई नेकलेस कोई चेन कुछ आपने पहना हो आराइश के लिए। इस्लाम पसंद करता है औरत आराइश करे, ऐसा नहीं कि इस्लाम आपको कहते गला काट के अपना रख लो तालिबान जैसा दीन रख लो, नहीं तुम करो आराइश, वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, ज़ीनत करो लेकिन ज़ीनत को दूसरों पर जाहिर ना करो। लेकिन जो हिजाब करती है सर में तेल लगाओ ना सगे भाई की शादी निपटा करा देंगे, किसी के फरिश्तों को खबर नहीं होगी क्योंकि किसी ने आपकी शैला के नीचे देखा। मैं मदरसों में अक्सर कहती हूँ ये सत्तारों लुयूब है, बहुत सारी चीजों का भरम रख लेती है, हम टेंशन फ्री होते हैं। अगर एक औरत बेपर्दा तैयार होकर बाहर निकलती है और एक पर्देदार औरत तैयार होती है, स्पेशली जो बंद अबायास पहनते हम, टेंशन फ्री चढ़ाई मकना पहना निकल गए और वो बेचारी भी खड़ी अलमारी के सामने सोच रही होगी क्या पहनकर जाऊं क्या पहनकर जाऊं, टेंशन। आपने अपने आप को खुद टेंशन में रखा, आप रिलैक्स रहती हिजाब ने हमें बहुत सारी चीजों से, बहुत सारी मुश्किलों से निजात दे दी। आप सोचिए, ये जो बिल्कुल खुले बालों के साथ फिरते हैं, इनको फिक्र होती है पर्मिंग करवा लो, स्ट्रीटिंग करवा लो, रिबॉन्डिंग करवा लो, बालों को ब्लू डाई कर लो। भाई आप सारी टेंशनों से आजाद, आप एक सर पर पहनेंगे चुपचाप। लेकिन खैर, पर्देदार औरतों का एक प्रॉब्लम जिमनम जिक्र करके एतराजात के रद को बयान कर दूं, वो ये कि वो घर में अक्सर उजड़े हुए हाथ में फिरती हैं। ये भी उनकी एक ट्रेजेडी बन जाती है। दैट्स रॉन्ग। मैं आपकी खिदमत में एक रिवायत की तरफ इशारा करूं। ये रिवायत शादीशुदा जितनी है दिल पर लिख लें, जिनकी जो बच्चियां हैं उनके लिए भी मुस्तकबिल में काम आने वाली रिवायत है। रिवायत हुस्न वाली है, खूबसूरत रिवायत है। रावी रिवायत को नकल किया है, जाहिरन आ गए रिजाई ने चश्मे दर बस्तर में कि जनाबे फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा ने कि शहजादी के पास दो इत्र थे, एक अच्छा एक बहुत अच्छा। अच्छा वो नमाज के लिए इस्तेमाल करती थी, बहुत अच्छा जब वो अमीरुल मोमिनीन के पास जाती थी। और हम अगर कभी अच्छा परफ्यूम, अच्छी लिपस्टिक लगा लें तो बच्चे पूछे अम्मी मिला नहीं जा रही है। ऐसा भी होता है। ये डैट स्ट्रॉन्ग, ये गलत है कि आप घर में सर झाड़ मुंह पहाड़ बना के रखें। मैंने ये जो आपको शुरू में एक हम्बल रिक्वेस्ट की थी ना, सूरह नूर के आयत नंबर 31 पढ़े। उसने पहली जात जिसे खुदा मेंशन करता है कि मोमिनात को हुक्म दे दो निगाहों को झुका दे, फुरूज की हिफाजत करें, अपनी जीनतों को जाहिर ना करें सिवाय शोहरों के। दीनदार तबके का एक सीवियर प्रॉब्लम। हम ऐसी गैदरिंग्स में जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जहां बहुत अच्छा हिजाब का इंतजाम है, साहिब खाना ने मिलाद के लिए घर के मर्दों को बाहर निकाल के रख दिया है, लेकिन हम मिलाद में जाते हैं, अच्छी ड्रेसिंग करते हैं, अच्छे परफ्यूम लगाते हैं, जो हमने ड्यूटी फ्री से खरीदे होते हैं, जो हम दुबई से खरीद के लाए थे, और वो घर में जब हमने खुदा नास्ता घर वालों के पास बैठे होते हैं तो बोल्टन मार्केट से जो हमने सस्ते वाले खरीदे थे लगा कर बैठ जाते हैं। और कभी कभी बच्चे एतराज करते हैं खुशबू है तो लग रहा है आपने कीड़े मार स्प्रे किया हुआ है। यानी हमारी दीनदार खवातीन का ये एक इशू है ऑलमोस्ट। देखिए, हम किसी को पर्सनली क्रिटिसाइज करने का हक नहीं रखते, लेकिन नॉर्मल दीनदार औरत में ये एटीट्यूड देखा जाता है। घर में होगी ना तो अजीब हुलिया बना हुआ है, सर झाड़ मुंह पहाड़ टाइप की। जैसे उसे किसी गैदरिंग में जाना होगा जहां अच्छा हिजाब का इंतजाम होगा, भाई सीनत सबसे पहले शौहर की करो, वो बेचारा उसी शक्ल को देखेगा। और जैसे घर आएंगे सब कुछ उतार उतर के फिर नहीं कपड़े खराब हो जाएंगे, स्टैच्यू बन के बैठी होती है, 10 मिनट और अच्छे कपड़ों में रह ले तो समझिए बड़ा एहसान आज घर वालों पे कर लिया है। तो ये एक गलत बात है। खुद मोमिनात को इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि ना खुदा पसंद करता है वो मुसल्ला इबादत पे ऐसे खड़ी हो बगैर जेवर के, और ना ही ये चीज रिकमेंडेड है दीन के अंदर कि आप ऐसे हो जाए कि आप ना आपको किसी डिजाइनर ड्रेस की फिक्र हो, ना आपको जमाने के जो हिट कलर्स हैं, जो अच्छे कलर्स हैं, जो अच्छे ड्रेसेस हैं आप बनवाएं पहने घर में एकदम तितली बन के फिरे। लेकिन हमारा प्रॉब्लम है कि हम घर में अक्सर शलवार और कमीज और दुपट्टा और टाइप के बने हुए होते हैं, और जैसे हम बाहर जाने लगते हैं फिर अपने आप को मेंटेन कर लेते हैं। ये बहरहाल एक कोताही है जो प्रैक्टिकली लाइफ में की जाती है। खुलासा, पहला एतराज ये है कि औरत महसूर हो जाती है, औरत कैद हो जाती है। आप दुनिया में सैकड़ों औरतों की मिसाल, हमारे अपने वो जो बेचारी कैप्टन मरियम, क्या नाम था उसका, अगर मरियम फियाज, ओके ओके, खाली मरियम तक हम रहते हैं, ठीक है। अब फर्ज करें, करने वाला पर्दे के साथ सब कुछ कर रहा है, पर्दा रुकावट या हर्डल क्रिएट नहीं करता। पर्दा तो आपको प्रोटेक्शन देता है, पर्दा आपको प्रोटेक्शन देता है, बहुत सेफ साइड देता है। ये जो एतराज किया जाता है आपके सामने, इस वक्त हमारे पास बेहतरीन खवातीन हैं हिजाब के एतबार से। मैं खुद पर्सनली 3-4 अच्छी डेंटिस्टों को जानती हूँ, पूरा हिजाब करती है माशाल्लाह, बल्कि एक को तो जानती हूँ वो दजस में थी, निकाब भी डालती हैं, डेंटिस्ट भी हैं। यानी ये चीजें किसने कहा कि ये चीजें रुकावट खड़ी करती हैं? मसला क्या होता है कि हमें थोड़ी सी मुश्किल का सामना करते हैं, हम बैकग्राउंड रिवर्स के ले लेते हैं, फिर हम सारी जिंदगी पर्दे को कोसते हैं। अगर हम थोड़ी देर खड़े हो जाते, खुदा के एक वादे पर भरोसा करते जिसमें परवरदिगार आलम ने कहा था वल्लदीना जहादू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो शख्स हमारे रास्ते पर चलेगा हम उसके लिए रास्तों को खोल देंगे। मैं इसके लिए एक बड़ी घिसी पिटी मिसाल देती हूँ, हवाई जहाज। जो शख्स भी जिस शख्स ने भी पहली मतलब हवाई जहाज बनाया उसके अंदर इमरजेंसी एग्जिट रखे, इतना एयर टाइट होता है फ्लाइट के दरमियान हवाई जहाज। लेकिन जैसे ही खुदा नास्ता इमरजेंसी लैंड करते उसके इमरजेंसी एग्जिट खुल जाते हैं। हवाई जहाज बनाने वाले को पता था कि इसके अंदर इमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए, रब्बुल अरबाब को नहीं पता था। जो दीन की खातिर डट जाता है, यूसुफ अलैहिस्सलाम ताला देख चुके थे, गल्लकतिल अब्वाब, लेकिन वो बंद ताले के पास गए, उनका काम उस बंद दरवाजे तक जाना था। खुदा यूसुफ का काम बंद दरवाजे को खोलना था। हम दिन जहां कहीं मुश्किल के साथ टकराते हम रिवर्स गियर ले लेते। हम थोड़ी देर खड़े रहे, खुदा ने मरियम के लिए बहुत ताले जोड़ साहब के 25 दिसंबर को अगर आप वाकई हजरत ईसा की विलादत मान लें तो वो खजूर के पकने का मौसम नहीं है, खजूर पका दी, लेकिन मरियम से कहा इसे हिलाओ, गिरे की उठाकर खाओ, मुंह में डालने का मिजाज नहीं हमारा। तो हम जहां पर कहीं पर्दे से टकराते हम कहते नहीं ये पर्दे ने मुसीबत खड़ी कर दी, नहीं आप स्टैंड लेती खुदा आपके लिए एग्जिट जरूर निकालता। फिर दूसरी चीज, एक हमारे मुआशरे का दूसरा जनरल प्रॉब्लम जिससे मुझे नहीं पता आप एग्री करेंगे या नहीं करेंगे, खैर एग्री नहीं भी करेंगे तो मैं तो बोल के चली जाऊंगी। माओं को लगता है पर्दा उनकी बेटियों की शादी के रास्ते में रुकावट है। हमारे फिर पंजाबी की मिसाल हूं, चाहे आपको समझ आए चाहे आपको समझ ना आए, मैं तर्जुमा कर दूंगी। एक तिबन्नो सोनी उत्तो सुती उठी। मतलब जो खवातीन नॉर्मल शक्लो सूरत की पर्दा करती है ना, तो बड़े कहते हैं एक तो वैसे ही ऐसी हो, ऊपर से पर्दा शुरू कर दिया, आप कोई पूछने वाला नहीं है। मैं आपसे सवाल करती हूँ, अगर पर्दा शादी के रास्ते में रुकावट है तो क्या हर शादीशुदा औरत बेपर्दा है और हर बेपर्दा लड़की शादीशुदा है? बस रुकावट कहीं, हमारा प्रॉब्लम ये कि खारिज सन होती खुजाते घाल को है। अगर रिश्ता नहीं हो रहा, फोर्स करें माँ की बदअखलाकी की वजह से रिश्ता नहीं हो रहा और बच्ची ने पर्दा करना शुरू कर दिया, तो माँ बार बार ये नहीं कहेगी कि मेरी बदअखलाकी या मैंने ससुराल वालों के साथ, बहुत सारी चीजें मेंशन होती है ना बच्चियों की शादी में, मतलब किसी को पता चल जाए कि अम्मा ने भी ससुराल वालों के साथ निभा नहीं किया, लोग कहेंगे इस घर की बेटी रहने का फायदा। अम्मा कभी भी ऐसी चीज को मेंशन, वो कहेंगे हाँ ये पर्दा शुरू कर दी ना मनहूस मदरसे जाकर, इसी वजह से तुम्हारी कहीं शादी नहीं हो रही। असल मतलब कि वो खारिज पर भी खुदा गाल को रही है, पर्दा रुकावट, वरना इतनी शादीशुदा खवातीन इस तरह से हिजाब में नजर नहीं आती। और इतनी बेचारी बेपर्दा शादीशुदा, बेपर्दा और गैर शादीशुदा खवातीन की भी लिस्टें इस तरह से बढ़ती नहीं जाती। जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को निकाला जाए। एतराज किया जाता है पढ़ाई के रास्ते में रुकावट है, नहीं बड़े बड़े ओहदों पर बड़ी बड़ी पर्देदार खवातीन पहुंच गई, हर औरत आसमा जहांगीर हिना रब्बानी खर नहीं होती, और बहुत सारे नाम भरा पड़ा है आप जाकर देखें दुनिया, और बहुत सारी खवातीन ऐसी जिन्होंने पर्दे के अंदर रह के पार्लियामेंट में भी चली गई, पता नहीं कौन कौन से काम भी कर लिए और इंसान हैरान रह जाता है। दूसरी चीज जो हमारे माशरे में समझा जाता है वल्लाह आलम ये क्यों है, असल में मैं कभी कभी महसूस करती हूँ नफसियाती तौर पर हम किसी काम को खुद नहीं कर पाते, जो कर रहा होता है उसे रोकने की इंतहाई नाकाम और थर्ड क्लास कोशिश करते हैं। इन्हें भी छोड़ दें, हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी खलास बस ठीक है। दूसरा मैंने कहा शादी के रास्ते में अम्मीज को अक्सर या घर के बड़ों को रुकावट, इस पर्दे पर तुम्हें कौन ब्याह नहीं आएगा? अल्लाह ने अगर मुझे पर्दे की तौफीक दी है तो कोई ऐसा मर्द भी रखा है जिसे पर्देदार लड़की की ही वो बेचारा ढूंढता हुआ झंडीला का दूसरा जूता लेकर आ जाएगा और ब्याह कर लेकर चला जाएगा। खैर अब शादी के 25 साल बाद तो ऐसी शादी की बातें भी मुंह से देव नहीं देती। और फिर इस तरह के जितने भी एक्सक्यूजेस लाए जाते हैं हिजाब के हवाले से, ये सब लेम एक्सक्यूजेस हैं, इन एक्सक्यूजेस को सुनने की, या मतलब मैंने जैसे कहा तफरी के रास्ते में रुकावट, वो बेचारे पिछले दिनों में एक वो तराना भी आया हुआ था, वो लड़कियां पता नहीं कराटे खेल रही थी, बिल्डिंगों से नीचे उतर रही थी, सिपाही पासदारान की औरतें, वो कमांडो ट्रेनिंग ले लेती हैं रानी चादर के साथ। हमारे जैसी औरत को अगर बैग और चादर के साथ बच्चा उठाना पड़ जाए तो चादर कहीं होती है, बैग कहीं और बच्चा कहीं। प्रैक्टिस के साथ आप हर काम कर सकते। यानी मैं इराकी खवातीन से, पहले मैं ईरानियों से बड़ी इंस्पायर थी बात सुन, इराकियों को देखकर तो मैंने ईरानियों को भी भुला दिया, यही भी औरत है, वो निकाब के साथ सर पे टोकरी रखी हुई उसने चल रही है चल रही है। मैं सोची थी अगर मैंने सर पर सिर्फ अपना हैंड बैग रखा हो 20 दफा गिर चुका होता। ये सब लेम एक्सक्यूजेस हैं। करने वाले हर तरह के हालात में जीकर दिखाते हैं, करके दिखाते हैं, डट के दिखाते हैं, और खुदा उनकी इस तरह से मदद करता है कि फिर सामने वाला अपना मुंह लेकर रह जाता है। हम सिर्फ खुदा के साथ अपनी बॉन्डिंग को हिजाब के मामले में स्ट्रांग करें, बाकी ये सारे बहाने हैं हमारे। अब इसके बाद आ जाए खवातीन में बेपर्दगी के असरात। ठीक है, आपके ख्याल में खवातीन में बेपर्दगी का सबसे पहला असर क्या आता है? गैरत तो खत्म हो ही जाती है ऑब्वियसली। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैं कभी कभी बात ये जो होती हैं मीडिया पे आने वाली बड़ी वो टाइप की खवातीन, समझ गई ना, दूसरी जिनको खवातीन कहने को भी दिल जी बोलिए आप, हया तो होती तो पहले ही ऐसे कपड़ा ना पहनती ना। लेकिन आपने देखे मैं कभी कभी इनको बहुत बदनसीब समझती हूँ, इंसाफन बदनसीब है औरत, बद अखलाकी नहीं आती। सबसे पहली चीज जो औरत की बेपर्दगी की वजह से जलजिले की जद पर आती है उसकी फैमिली लाइफ है। मैंने आपको याद हो तो शुरू में कहा था गैरत की दो इकसाम है, मैंने गैरत की दूसरी किस्म अभी तक बयान नहीं की। शेख मुस्तफा मदनी कहते हैं गैरत की एक किस्म औरत के लिए और दूसरी किस्म मर्द के लिए है। मर्द बेगैरत हो जाता है, मर्द यानी तुम अपनी बीवी पर इतना भी कंट्रोल नहीं कर पाए या तुम अपनी बेटी पर इतना भी सेल्फ कंट्रोल नहीं दिखा पाए। और बईद नहीं है कि इस औरत की बेपर्दगी की वजह से वो मर्द बेचारा धन्नू में, वैसे बेचारा तो नहीं है, बेचारा नहीं है, यानी अच्छे लगते हैं वो भाई जो कहते हैं तुमने फुलां का फोन पसंद। अभी भी जो अच्छे रवादार घर है वहां लैंडलाइन, अगर मर्द घर के बैठे हैं तो खवातीन घर की डोरबेल बजती है, लड़कियां दूध वाले से दूध, पर्दे वो अखबार वाले से अखबार नहीं लेती घर में। अच्छा ये चीज घर के अंदर थी, इस चीज को आहिस्ता आहिस्ता कम किया गया। मसलन वो औरतें जिनको बड़ा, फिर मैं आसमा जहांगीर का नाम लूंगी, तो आसमा जहांगीर ने अगर कभी भुले भटके से मेरे मुझे अपना नाम सुन लिया सर पीटेगी, मैंने तुम्हारा क्या लिखा है। जो औरतें मैदान में आकर कहती हैं हम मर्दों के शाना बजाना चलेंगे, हम शाना बजाना चलने के लिए पैदा ही नहीं हुए थे, हम शेल्टर में रहने के लिए पैदा हुए थे। कुरान की एक बड़ी प्यारी आयत है, मेरी कुछ अर्सा पहले लाहौर में किसी आलिम से इस आयत पर बड़ी बहस हो गई। कुरान की तरफ रिजाल कवमून अलनिसा, मर्द औरतों के कईम है सरपरस्त। मैंने कहा ये सरपरस्ती के बदले में खुदा औरत से क्या चाहता है, दो या तीन चीजों में ओबीडियंसी मुतकाबिल मर्द से क्या चाहता है। मर्द पर एक, मैं आपको तबरकन फिक्री मसले की तरफ इशारा करूं, मैं फिक्री मसाइल को टच भी नहीं करना चाहती ना ही मेरा आज का मौजू है। एक मर्द जब शौहर बनता है वाजिब रिक्वायरमेंट उसकी नफके के एतबार से होती है रोटी, रोटी से मुराद खाली रोटी नहीं, और जिसका मुआशरे में स्टेटस है, जो उसका उर्फ में शानियत है, उसमें हर औरत की एक शानियत है। एक वो बेचारी होती है जो हमारे घर सुबह सुबह झाड़ू पोछा करने आती है, उसकी एक शानियत है, एक हमारी शानियत है, एक एग्जीक्यूटिव क्लास की शानियत है। हर औरत की अपनी एक हैसियत होती है ना मुआशरे में, इसी एतबार से शरीयत उसे कुछ जिम्मेदारियां मांगती है। मर्द से कहती है इसकी शानियत के मुताबिक इसे खाना दो, इसकी शानियत के मुताबिक इसे घर दो, इसे कपड़े दो, इसकी मेडिकल दो, इसका ये करो, इसका वो करो। खुद तुम बेचारे धूप में झुलस जाओ, सर्दी गर्मी को बर्दाश्त करो, चाहे साइकिल पर जाकर कमाने वाला मर्द हो, चाहे एयर कंडीशन ऑफिस में बैठकर काम करने वाला मर्द हो। औरत के लिए ये चीजें उससे मांगता है, और अगर खुदा ना खासा वो नहीं देता, चाहे औरत साहिब हैसियत ही क्यों ना हो, औरत के पास अपना अच्छा खासा ही क्यों ना हो, तो भी शरीयत उसे मकरूज करार देती है, तुम बीवी के मकरूज हो। और इसके मुकाबले में बीवी से थोड़ी सी ओबीडियंसी मांगती हो, बाप को कईम बनाया, भाइयों को बड़े भाइयों को एक वो दी, बहरहाल आपको प्रोटेक्ट किया, आपको शेल्टर में रखा, आपको साये में रखा, आपको बहुत सारी गर्मी सर्दी से बचाने के लिए आपसे कहा तुम रेहाना हो। मौला ने तशबीह दी औरत को, इन्नल मरा रेहाना कर रेहाना, औरत कली की मानिंद है, लाभ कहरमान ही, औरत पहलवान नहीं है। इंसाफन आप खुद सोचिए मर्द की गैरत का पहला तकाजा क्या है। बोले आखिरी 12-13 मिनट रहे हैं, आप मुझे ऐसे ना देखें, और क्या मेरा दिल टूट जाता है। मैंने पिछली दफा कहा था ना जैसे वो भाभियां देखती हैं लॉन्ग वीकेंड पर आने वाली, नहीं नंदे नहीं नंद को देखती, हाँ ऐसे अरे फिर आ गई, मैं नहीं जाती ऐसे किसी के सर पर ठहरो ना आगे करने करे, या अनवॉन्टेड मेहमान आ जाता है, या कराची वालों के लिए पिछले दिनों 2 दिन सर्दी आई थी, ठिठर रहे थे सारे, मूंगलियां खरीद रहे थे। बोलिए मर्द की पहली गैरत वो अपने घर की औरत को अनटच चाहता है। इसीलिए आपने देखा जब कहीं गैरत की लड़ाई होती है ना, चाहे किसी भी कल्चर का मर्दों, सामने वाले को मां बहन की बात करता है और सामने वाला हाँ ठंडा उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि हम एक रिस्पेक्ट, यानी खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, मैं पिछले दिनों ऐसे ही किसी से शेयर करी थी, कहने की मतलब बच्चे बाजूकार कुछ कोई ऐसी नामुनासिब बात कह जाते हैं, वो लड़की तो ऐसी थी और वैसी थी, तो मतलब वो कहने लगी खातून कहने की मैं तो अपने बच्चों को ये भी नहीं कह सकती घर में बहन बैठी है, क्योंकि उनके सिर्फ बेटे हैं, तो कहने लगी मेरा बेटा कहता अल्लाह पाक तेरा शुक्र तुझे बहन दे दी, वरना वहां से बहन के ताने देते कि कहा सकता था कि घर में बहन नहीं बैठी हुई। लेकिन इंसाफन अगर हम अपने घर के मर्द को औरत का एहतराम दे दें, एक हद तक, एक लिमिट तक, एक स्टेज तक घरों में ये रिस्पेक्ट थी, बेटियां अगर पढ़ने के लिए ट्यूशन व्यूशन अब बना तो घर पर लड़कियों के लिए घर पर ट्यूटर अरेंज किए जाते थे या बड़े बहन भाई पढ़ाते थे डंडे के तौर पर, चचा मामू किसी को घेर लिया जाता था। औरत को अपने नामों की हिफाजत चाहते, उसको नामहरमों से कम इंटरेक्ट होने दो, इंटरेक्शन उनका कंट्रोल करो। लेकिन मर्द की गैरत का तकाजा क्या है? वो पसंद नहीं करता कोई उसकी माँ पे कमेंट्स करे, चाहेगा बीवी पर, बेटी पर? आंखें निकालेगा। मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी मर्द अपनी बेटी पर दिखाता है, यानी अब मेरी गलत सोच भी हो सकती है, एक माशरे के अंदर जनरल सर्वे का है, बहन बीवी बेटी और माँ, इन रिश्तों में सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी मर्द बेटी पर दिखाता है। उसे अपनी बिल्कुल ही मिल्कियत समझता है, और बीवी के बारे में उसको कभी मिलते तो सुसन नहीं ऐसी और ये घोड़ी दी थी, इसका कोई चारा नहीं है, लेकिन वो बेटी को अपनी प्रॉपर्टी और वो समझता है। बहन के बारे में उसको होता है कि अब्बा का भी अमल दखल है, बाकी भाइयों का भी है। माँ के बारे में सोचा वो कंट्रोल से बाहर जा चुकी है, अब उम्र के हिस्से भी नहीं रही उनको समझाया जा सके, लेकिन बेटी के बारे में वो सेंसिटिविटी ज्यादा है। मर्द की गैरत का पहला तकाजा ये है कि वो नहीं चाहता कोई उसके नामों उसकी तरफ उंगली। तारीख की बड़ी बड़ी जंगें औरतों के सरों पर इसलिए भी हुई है, औरतों के सर पर इसलिए भी हुई, मतलब किसी ने किसी की बहन को खुदा खासा कुछ ऐसा वैसा कह दिया, और ये चीज फिर मर्द से बर्दाश्त। हत्ता में अगर जवादी आमली की बड़ी एक खुश किस्म की किताब है, मैं कभी कभी सोच रही उस किताब को उस वक्त पढ़ना चाहिए जब नींद ना आ रही हो, तीन चार सफे गुजरते हैं ऐसे 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 और फिर चिरागों में रोशनी नहीं रहती। उन्होंने फलसफा यूनान के अंदर बहस उठाई है, एक बहस को इशारा किया है कि माँ कबले इस्लाम लोग अपनी बेटियों को क्यों जिंदा दर गौर कर देते थे, और उसमें उन्होंने जो रीजन दिए वो बड़ा अजीब है। कहा वो इस बात से डरते थे कि उनका नामूस किसी जंग में असीर बना लिया जाए और किसी दूसरे मर्द के इस्तेमाल में चला जाए, यानी ऐसा नहीं कि बिला वजह बेटियों को दफना देते थे। और फिर ये चीज अरबों ने जाहिलियत के इस्लाम से पहले के जमाने के कल्चर से अडॉप्ट की, जब जंग होती थी औरतें असीर बना ली जाती थी, दरबदर फिराई जाती थी, डिस्प्ले पर रखी जाती थी। इवन इस्लाम के आने के बाद भी जो जो कनीजें बेची जाती थी बाजारों में, और आपने बहुत सारे वाकया सुने होंगे कि उसको खरीदा गया, उसको खरीदा गया, बाकायदा उनसे कहा जाता था पिंडलियों से कपड़ा उठाओ ताकि देखा जाए तुम्हारा हुस्न जमाल और फिर तुम्हारी कीमत लगाई जाए। और इस चीज को इस्लाम ने खानदानी औरत के मुकाबले में मामले में इतना शदीद डिस्करेज किया, यानी रिवायतें कहती है मलऊन है वो शख्स जो अपने घर की औरत को बेपर्दा निकलने की इजाजत दे। औरतों के अंदर असरात क्या आते हैं? सबसे पहली चीज उनकी फैमिली खराब होती है। अगर वो हर मर्द के साथ बेपर्दा भी है और उनकी उनकी टोन भी ऐसी है, आपके ख्याल में मर्द को कितनी देर लगती है ये ख्याल लाने में कि ये किसी में भी इन्वॉल्व हो सकती है, जबकि मीडिया भी इस चीज का बहुत हद से ज्यादा प्रचार कर रहा है। मैंने पीछे सवा डेढ़ साल से नहीं देखे टीवी के बहुत सारे ड्रामा, लेकिन मुझे अंदाजा है कि ये चीज मीडिया में कुछ दो साल पहले बहुत ज्यादा फोकस होती थी, शादीशुदा औरत है किसी और के साथ इन्वॉल्व है। ये सोच आप दे रहे ना एक मर्द को कि तुम्हारे घर में भी बैठी हुई बीवी खुदा ना खास्ता कोई भी गलत हरकत या कोई भी करप्शन कर सकती है, ये कहां से मिलती है मर्द की गैरत को? ये सोच मर्द के अंदर ये सोच कहां से आती है? अगर औरत लिए दिए रहने वाली हो, औरत ने अपनी वही बात हमारी बहन वाली सर्कल बनाया हुआ है, अपनी एक बाउंड्री बनाई हुई, उस बाउंड्री के अंदर कोई दाखिल नहीं होता, तो उसके मर्द को भी चाहे वो कोई भी उससे वाबस्ता मर्द हो, जरूरी नहीं कि मर्द का जब मैं नाम ले रही हूं तो सामने आप सोचे सामने उसका शौहर ही है, बाजुबत बच्चे भी गैरत दिखाते, बाजुबत बच्चे भी बात चीजों में, या मसलन वही बात छोटे भाई भी, जरूरी नहीं भाइयों का भी बड़ा होना जरूरी नहीं, वो जब दिल चाहता है बड़े बन जाते हैं, जब दिल चाहता है छोटे बन जाते हैं। मुझे तो किसी ने पिछले इतनी खूबसूरत बात शादी हॉल में सिखाई कि बेटा जब तक नीचे है बेटा है, यहां तक आएगा भाई बन जाएगा, ऊपर जाएगा तो अब्बा ही बन जाएगा। मैंने कहा बहुत ही यारी बात है और वाकई गहरी बात है। वो अब्बाओं की तरह आपके साथ डील करते हैं, ये कहां जा रही है आप इस तक, और आपको घर में चैन क्यों नहीं है, या फिर अम्मिया भी तो फिर ऐसे ही ब्लैकमेल करती हैं कि ला रहे 20 रुपए की दही है मैं खुद चादर पहन कर जाऊं, तो बेचारा रिमोट कंट्रोल से बंद करके, ये अच्छे डायलॉग आपने सीख लिया कहीं से कि मैं दही लेकर आती हूँ, जैसे हमेशा खुद ही दही लेने जाती हूँ, हमें पता है कि हम हर रोज दही लेने नहीं जाते। हमने इस प्रोटेक्शन को, अब मैं आपसे कुछ दो या तीन सवाल करती हूँ और हमारा टाइम, मैं आपको 5 मिनट पहले ही छुट्टी दे दूँ, यानी 5 मिनट पहले खुद ही चली जाऊंगी, थक गए ना, थक जाते, मैं आपकी जगह हूँ तो सच्ची मुझे थक जाऊँ इतनी। मेरा पहला सवाल लिख ले, इससे प्यार से मैं कभी अपने बच्चों से कहती हूँ मुझे बगैर पैसों की दही ला देते कि अम्मी आज बड़े मूड में हैं। मेरा पहला सवाल, इस प्रोटेक्शन को जो हमारे घर का एक इस्लामी, हत्ता वो इस्लामी मुआशरे जहाँ बहुत ज्यादा दीन राइज नहीं था लेकिन मोरल वैल्यूज बाकी थी। देखिए दो अलग अलग फैमिलीज हैं, कुछ फैमिलीज ऐसी जिनमें हराम हलाल नजिस पाक ये सब चीजें ना, कुछ फैमिलीज ऐसी नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे ने सूसू किया है, किसी ने टिश्यू से भी पहुंच गया तो कहेंगे अच्छा पाक है, उन्हें इन चीजों से सरोकार नहीं, लेकिन मोरल वैल्यूज जिन फैमिली में बाकी है। घर के मर्द, मैं फिर कह रही हूँ इस मर्द से कोई स्पेसिफिक रिश्ता नहीं है, ये चचा भी हो सकता है, बाल हमारे घरों में होते थे हमसे दो साल बड़े चचा, चार साल बड़े मामू, हमारी पिछली जनरेशन में ऐसा था और हम उनके साथ मसलन भाइयों की तरह डील करते थे और वो भी वक्त पड़ने पर मामू बन जाते थे और वक्त पड़ने पर भाई। ठीक, इस प्रोटेक्शन को हमने कैसे कब समझना शुरू किया? मैं आपको हिंट दूं, हमने एक दफा मदरसे बच्चियों से पूछा कि आपको अपनी अम्मी से क्या कंप्लेन है, तो बाद बच्चियों ने कहा कि ये भाइयों को फ्रीडम देती है हमें नहीं देती, भाई लोग नाइट स्टे के लिए फ्रेंड्स की तरफ जाना चाहते हैं, अम्मियां रोक टोक नहीं करती, हमारे लिए ऐसी इजाजत है, यानी आपके ख्याल में मेरी अगर कोई 16-17 साल की बच्ची हो मैं उसे फ्रेंड्स के साथ कंबाइंड स्टडी के लिए जाने दूंगी, खून पी जाऊंगी उस बेचारी की जरूरत ही नहीं होगी, और वजह तो उसको पता होगा, पहले से ही पता होगा, यानी हमारी बच्चियां हमारे घरों की अल्हम्दुलिल्लाह वो 16-17 साल की उम्र में इजाजत भी नहीं मांगती मेहंदी वेहंदी के फंक्शन में जाने के लिए, बहुत कुछ भी सहेली थी और मरने वाली हो रही थी, उसकी शादी में नहीं जाएंगे तो हम कहते मसलन भाई के साथ जाओगी, भाई के साथ सीधी तरह वापिस आ जाएगा, जब तक वो वापिस नहीं आते हम 10 दफा मैसेज करके पूछे कहाँ हो, वो अभी तक खाना ही नहीं लगा, दफा करो खाने को, घर में बचा हुआ पड़ा हुआ, नहीं तो आगे अंडा बना के खा लेना, मुर्गी ने अंडा दिया ही क्यों था, इसी तरह की इमरजेंसी में खाने के लिए अल्लाह की बड़ी नेमत है ये मुर्गी का अंडा। लेकिन ये जो हम प्रोटेक्शन देते थे, हमारी बेटियां हर जगह शुतुरे बेमुहार की तरह फिरती नहीं थी, हर किसी से बात नहीं करती थी, हम उन्हें एक लिमिट में रखते थे। हमने इसे कैद समझना कब से शुरू किया? खत्म कर दी मैंने अपने पेपर लिखने के लिए, बोलिए एक मिनट इनको बोलने दे। समझ गई मैं आपकी बात, आखिर तक समझ गई मैं। देखिए मैं जब हिजाब के फिक्री मसाइल पढ़ाऊंगी इंशाल्लाह जिंदा रह गई तो मैं आपको बताऊंगी कि हिजाब की फिक्री मसाइल के अंदर कुछ कवानीन है, उन कवानीन का अगर आपने ख्याल नहीं रखा, बात बहुत माजर में आगे तो हमारी ईरानी खवातीन ने 5 मिनट कपड़ा लपेटा होता है लेकिन वो हिजाब की एक शर्त को माइनस कर जाती है, वो इस तरह से लपेटें कि वो उनकी यानी पूरा फिगर फील होता है। अब ये चीज मसलन आप जीन्स और टॉप पढ़ लें, हाँ नहीं, लेकिन मैं इस चीज को इंशाल्लाह, हम ये सखी मसले हैं ये हम आपको बाद में बयान करेंगे। इन्होंने कहा हमने दूसरों की बातें सुनकर इंसाफन, हमने मीडिया से सीखा, हाँ हमारी सोच बदली नहीं, हमने सोच को बदलने की इजाजत दे दी, हमने हम पैट बन गए, हमें इन्होंने कहा कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए थे, हमने कहा नहीं, हमने किसी ने कहा वो ब्लैक कपड़ा पहनने से सैडनेस आ जाती तो हमने सैडनेस फील भी करना शुरू कर दी, ऐसा नहीं है। शेख मुर्तजा मुदारी ने तलखीन के हवाले से अच्छा इशू शेयर किया, हमारी औरत तलखीन के असर में चली गई, यानी हमें ये चीजें बोझ लगने लग गई, जो चीजें हमारे लिए खुशी और फखर का, तुम्हारा भाई तुम्हें छोड़ने आता कुछ संडे मदरसे, तुम अपने अब्बू के साथ आती हो, खुदाया तुम्हारी फैमिली इतनी कंजर्वेटिव है, शुक्र मैं तो बड़ी लिबरल फैमिली की। इन्होंने कहा और हमने भी अपनी फैमिली को कंजर्वेटिव, उसके बाद से हमने चश्मा लगा लिया वो वाला और अम्मी की हर बात कंजर्वेटिव, हम कुछ ऐसा ऐसा देख रहे थे ऐसी, भाई ने अगर बंद करो ये चैनल देखने वाला नहीं, एक तो इस घर में सारे कंजर्वेटिव है, अब हम तस्वीर पकड़ लेंगे और शैतान हमारे कान में बार बार सूर फूंकता रहेगा, वो सूर इतना फिर फूकेंगे, वो बेचारा सिर्फ हमें तलखीन करता रहेगा कि हमारे वाले रिजिड नेचर के हैं, वो बड़े कट्टर इस्लामी, तुम्हारे अबू की दाढ़ी इतनी बड़ी, तुम्हारे घर में सब मर्द ऐसे है, हर चीज से रोक टोक है, 10 बजे रात के वाईफाई बंद हो जाता है, कैसे घर में रहती हो तुम, ऐसे घर से तो इंसान जेल में चला जाए वही, यानी ये चीजें हम तलखीन के असर चले गए। औरत मातूफ होती है, बहुत जल्दी असर पजीर होती है, इसीलिए है कि उनको जितना हो सके दूसरे लोगों से मिलने जुलने से रोक के रखो, वो दूसरों का असर, हत्ता हम औरतें जितनी भी हम अपने आप को जितना सनाउल्ला समझे, हाजी जाहिद समझे, जमजम से धुला हुआ समझे, मुतमिन रहे, हमारे सर्कल में, यानी ये मैं प्रैक्टिस ही एक बता रही हूँ, हमारे सर्कल में अगर किसी ऐसी खातून का इजाफा हो जो बाद में बाद गाली देती है, कुछ अरसे बाद हमारी जुबान से गाली जरूर निकलेगी, क्यों निकलेगी? हम मातूफ हैं, हम जल्दी असर ले लेते हैं किसी चीज का। और इसके बरस कोई हमारे ग्रुप में ऐसा आ जाए, हमारी एक फ्रेंड थी हमारे ग्रुप में नया इजाफा, हर बात में इंशाल्लाह माशाल्लाह कहती थी, तो हमने भी उनसे इंशाल्लाह माशाल्लाह, हत्ता बच्चों ने फील किया भाई वो आपकी ग्रुप पे कोई है, इंशाल्लाह माशाल्लाह आप हर बात में इंशाल्लाह जाओगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो इंसान अच्छाई को भी, औरत अच्छाई को भी जल्दी लेती है और बुराई को भी जल्दी लेती है। आप उसे ये प्लेजर देती है, जैसे मैं इब्न इंशा का एक आर्टिकल नहीं, अताउल हक कासमी साहब का एक आर्टिकल पढ़ी थी, वो पता नहीं किसी काम से यूएसए गए थे, उनकी वो जो गाइड थी उसके साथ आखिर उन्होंने सोचा अपनी बेगम के लिए कुछ तोहफे तहफ ले लें ताकि बेगम का मूड भी सही रहे। बीवियां बेचारी चलती ही तोहफों पर है, या तारीफ या तोहफा, और तीसरी एक और चीज भी होती है जो हिडन है, उसको डिस्कस करने का टाइम नहीं है। इन्होंने अपनी बेगम के लिए आखिरकार पहले तो कुछ समझ में नहीं आया कि घर में अम्मी अब्बा के सामने पहन भी सके, वो अमरीका गए थे लालू खेत नहीं गए थे, आखिरकार एक लंबी सी व्यक्ति पसंद कर ली कि चलो इसके ऊपर दुपट्टा बनवा लेंगे खुद ही, और वो गाइड पूछे कि तुम जाकर अपनी बीवी से इसके पैसे लोगे, कहा नहीं, कहा मैं मर जाऊं ऐसे आदमी के लिए जो मेरे लिए कुछ खरीदे और मुझसे उसके पैसे ना मांगे। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शौहर अगर बेचारे भूले भटके कुछ ले आते हैं तो हमसे उसका बिल चला, बल्कि हम धड़ल्ले से भाइयों से शादी के नाम पर अच्छी खासी नेक भी वसूल कर लेते हैं, अल्लाह का एहसान है। मैं कभी सोचती हूँ अगर कोई औरत ये कहती ना, औरत को हफ्ते में 7 दिन काम पर करना पड़ता है, 24 घंटे वो ऑनलाइन होती है, रात को बच्चे के कान में 3:30 बजे दर्द हो उसको 3:30 बजे खड़ा होना पड़ता है, बरस एक फैमिली वुमेन के अंदर इतनी बड़ी मोरस फोट होती है, वो जरा सा उसके पैर में मोच आ जाते हैं तो घर के 10 लोग दूध में हल्दी डालकर भी पिलाते हैं, नखरे उठाते हैं हमारे, अम्मी आपकी तो शक्ल ही उतर गई है, लेट जाए आप थोड़ी देर, या बेगम सुबह से लगी हुई, अच्छा थोड़ी देर रेस्ट कर लो फिर थोड़ी देर बाद खाना खा लेंगे। कितने जुमले हैं जो हमें सपोर्ट देते हैं, भाई है जो अल्हम्दुलिल्लाह एक आवाज दें तो फौरन आते हैं, अप्पा खैरियत फोन किया था, तो इन ब्लेसिंग्स को फील करें। उन ब्लेसिंग में से एक ब्लेसिंग हमारे घर के मर्दों की गैरत अल्हम्दुलिल्लाह, जो पसंद नहीं करते कि हम हर नामहरम या हर रात चलते के साथ बातचीत करें, परवरदिगार इंशाल्लाह हम सबके हिजाब की, हमारे नामूस की, हमारी आबरू की हिफाजत करें। हाँ परवरदिगार हमने पर्दे की तरफ पहला कदम बढ़ाया, मरते दम तक इस नेमत उज़्मा को हमारे लिए मुकद्दर फरमा, हमारे मरहूमीन की मगफरत फरमा। हमारी ये बहनें बेटियां आईं, कोई कहीं से कराची किसी कोने से, कोई कहीं से, कोई बहुत मुशक्कत से आकर, कोई बहुत कंफर्टेबल गाड़ी में बैठकर, परवरदिगार इन सब के आने को बैठने को कबूल फरमा। हम सब दिल में हाजतें लेकर बैठते ना, चाहे हम फर्शी अदा पर बैठे चाहे हम दर्ज में बैठे, परवरदिगारा हमने तुझसे मांगी भी नेमतें मांगी, आज के इस बाबरकत दिन में, संडे अमीरुल मोमिनीन का दिन है, आज के इस बाबरकत दिन के सदके में बिन मांगी नेमतों से माधा माल फरमा। और इंशाल्लाह आप घर वापस जाएं तो आपको कोई अच्छी खबर भी मिल जाए ताकि आपको मेरा दर्द ब्लेसिंग लगने लग जाए। ये खुद एक फुल टाइम मीडिया है, परवरदिगार इंशाल्लाह हमारे मरहूमीन की मगफरत करे और हमें हमारे बच्चों की सही तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। अब अपनी सेहत सलामती के लिए और अपने सब्र में इजाफे के लिए सलावात पढ़े मोहम्मद आले।
برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.